मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है, रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, कपड़ा लेने जाएं, 500 रुपए किलो केश बिल फर्ज, उधार पे 560 रुपए किलो, क्या शरअन ये जायज है कि उधार और नगद के रेट अलग-अलग अलग-अलग? अब बिल फर्ज है, केश ख़रीदने की ताकत नहीं है, 500 रुपए किलो केश है, क्रेडिट में 3 महीने के चेक पे 4 महीने के टाइमिंग पे 560-580 जिस तरह से टाइम पीरियड होता है उस हिसाब से रेट होते हैं, क्या ये शरण जायद है? इसके बारे में इरशाद फरमा दीजिए।
रेडीमेड सूट और कपड़े के हवाले से, और इसका पता ये भी है कि ये भी तोल के बिकते हैं, यानी पर केजी के हिसाब से, और आगे ये पर पीस ही इनको फ़रोग किया जाता है आमतौर पर जो रिटेल के अंदर वो बेचते हैं। सवाल उन्होंने खुद ही बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि आप उधार और किस्त, पहले तो हम सुनते हैं किस्तों का कारोबार, कोई फ्रिज लेना है, एलसीडी लेनी है, मोटरसाइकिल, गाड़ी या इस तरह हर काम में ये मामला चलते हैं।
खरीद व फरोख की दो किस्में हैं, बाज़ औक़ात ये होता है कि जिसके पास कैश अमाउंट है तो वो अपने कैश अमाउंट देकर ही वो चीज़ हासिल कर लेता है, और कभी ऐसा होता है कि आदमी को ज़रूरत चीज़ की है लेकिन उसके पास अमाउंट नहीं है कि वो उसकी अदायगी कर सके, तो अब वो 2-4-5 महीने टाइम ले लेता है। तो अब इसके अंदर फिर एक बीच का रास्ता ये निकाला जाता है कि ठीक है, अगर आपके पास अभी अमाउंट नहीं है तो फिर मैं इसको महंगा करके बेचूंगा। जैसे कि इनके सवाल से जाहिर है कि अगर इनके पास रकम मौजूद हो तो 500 रुपये किलो इनको एक कपड़ा मिल रहा है, लेकिन अगर ये अभी कैश अमाउंट नहीं देते तो इसी कपड़े की वैल्यू कीमत जो बेचने वाला है वो इसके प्राइस 560 रुपये लगाता है। तो ख़रीदो फरोख करने वाले आकीदेन इन दोनों के दरमियान जो भी रेट फाइनल फिक्स हो जाए, चाहे वो 500 रुपये किलो के हिसाब से कपड़ा बेचा जा रहा हो या 560 रुपये के हिसाब से बेचा जा रहा हो, तो दोनों अगर इस सौदे पर राज़ी हो जाते हैं तो इस तरह सौदा करना जायज़ है। अब रहा मामला, एक शुबा ये आता है कि नकद में तो ये 500 रुपये का मिल रहा है
और उधार में यही कीमत,
उधार में यही कपड़ा 560 रुपये का हो गया।
ठीक,
तो देखें ख़रीदो फरोख करने वाले अपनी चीज़ के जो रेट लगाएं, बेचने वाला अपनी चीज़ का जो भी रेट लगाए उसे इख्तियार है,
और ख़रीदने वाले को भी इख्तियार है
कि ना ख़रीदे।
सही,
अब उसको ज़रूरत है वो ख़रीद लेता है। तो यकीनन जब इस तरह किसी एक बात पर दो फरीकें जमा होते हैं तो दोनों को अपने अपने एतबार से फ़ायदा ही नज़र आ रहा होता है। जो 560 रुपए के हिसाब से पर केजी कोई कपड़ा ले रहा है तो उसे 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक पेमेंट बाद में करनी है।
ठीक है,
तो इस दौरान उसके पेश नज़र ये होता है कि मैं इस कपड़े के ज़रिए जो भी वर्क करना है, इस कपड़े को बनाना है, सीना है, बेचना है, इसके ज़रिए मैं इतना कमा लूँगा कि मैं 560 रुपये की वैल्यू भी अदा कर सकता हूँ।
सही,
तो इस हवाले से अगर आकीदेन फरीकेन किसी भी रेट पर जो कैश अमाउंट के मुकाबले में उधार में ज़्यादा तय हो रही है सौदा कर सकते हैं, और हमारे फुकाहे किराम ने इस बात को किताबों में वाज़े तौर पे बयान किया है कि अगर कोई चीज़ मिसाल के तौर पे नकद 1000 रुपए की है और उधार वही चीज़ 2000 रुपए की, तो फरमाया कि जायज़ है, वला युकरहु, मना नहीं है, और इसमें किसी किस्म का कोई सूद का पहलू नहीं है।
बाज़ को शुबा सिर्फ यही होता है कि भाई चीज़ तो वही है ना, अब जिक्र इसकी कीमत 50,000 रुपये थी इस बाइक की या मोबाइल की कीमत 50,000 थी, तो अब इसी की कीमत 60,000 ले रहे हैं और ये वक्फे की वजह से 60,000 ले रहे हैं, तो इसलिए यह सूद हो जाता है। बाज़ को शुबा ये आवाम को होता है, क्या कहेंगे?
अब जो भी मोबाइल अगर 50,000 रुपये का नकद दे रहा है और उधार में वही 60,000 का दे रहा है, तो वो 60,000 लेने की सूरत में इसी मोबाइल की कीमत 50 से 60 कर रहा है।
ठीक,
तो आप जो 50 से ऊपर 1, 2, 3, 10 हज़ार मज़ीद दे रहे हैं तो वो इसी मोबाइल की कीमत और इवज़ है। ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि ये मोबाइल मैंने 50,000 में ही बेचना है, लेकिन आप पैसे देंगे 6 महीने बाद, इस 6 महीने का जो गैप आ रहा है इसके मैं 10,000 रुपये अलग से लूँगा, बेचा 50 का लेकिन 6 महीने बाद आप पैसे देंगे, तो इस 6 महीने का जो ड्यूरेशन
मुद्दत के ऊपर
मुद्दत, इस मुद्दत के मैं आपसे अलग से 10,000 रुपये ले रहा हूँ। تو اب موبائل کے 50 ہی ہیں, مدت لمبی ہونے دراز ہونے اس کی وجہ سے وہ 10,000 عوض مدت کا اگر لے گا تو یہ ناجائز ہے. لیکن اگر وہ کہے کہ بھائی یہی موبائل 50,000 کا نقد ہے, یہی موبائل 60,000 روپے میں
ادھار,
لیکن یہ جو 60,000 ہیں وہ تقسیم نہیں کر رہا رقم,
صحیح ہے
کہ 50,000 موبائل کے اور 10,000 روپے 6 مہینے آپ کو جو میں وقت دے رہا ہوں
اس کے
ایسا کوئی بھی مسلمان جو قسطوں پہ انسٹالمنٹ پہ سامان دیتا ہے تو وہ الگ سے مدت کے الگ سے پیسے نہیں شمار کرتا. بالفرض اگر کوئی کرے
تو وہ غلط کر رہے ہیں,
وہ غلط ہوگا, وہ ناجائز ہوگا. لیکن عمومی طور پر جیسے کہ ہمارے ساحل محترم نے سوال کیا کہ 500 روپے فی کلو, 500 روپے اگر ایک کپڑا دیا جاتا ہے کیش میں اور وہی کپڑا 560 روپے فی کلو ہو جاتا ہے ادھار میں, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ جو 60 روپے اضافی آپ دے رہے ہیں وہ اس کپڑے کا 1 kg کا ریٹ بڑھا دیا.
صحیح, ٹھیک ہے.
ایسا نہیں ہے کہ کپڑا 500 ہی کا دیا لیکن 60 روپے اس لیے آپ سے میں لے رہا ہوں کیونکہ آپ پیسے مجھے وقت پہ نہیں دے رہے.
اچھا, یہی وجہ ہے کہ اگر بالفرض 6 مہینے ان میں طے ہوئے اور 6 مہینے کے بعد 7واں مہینہ بھی آ گیا,
جی جی,
1 مہینہ لیٹ کر دیا,
لیٹ ہو گیا,
تو اب بھی وہ زائد رقم تو نہیں لے سکے.
اب ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی میں 570 روپے کے حساب سے لوں گا, یوں نہیں ہوگا, کیونکہ جو ان کے درمیان سودا 560 روپے پر ڈن ہوا ہے 6 مہینے کی ادھاری پر, تو اب وہ 560 روپے ہی وصول کرے گا. اس سے 1 روپیہ زیادہ بھی لیٹ ہونے کی صورت میں مطالبہ نہیں کر سکتا,
نہیں کر سکتا. اور ناظرین کرام, اس میں دونوں طرف کے لوگوں کو خیال کرنا ہے, جس نے کسی سے پیسہ لیا چاہے قرض کی صورت یا اس طرح کا اس پر دین آ جاتا ہے کسی عوض میں, اس نے مدت 6 مہینے کی رکھی, تو اب وہ اس کی ادائیگی کے اندر اپنے اسی وقت اور اپنے اسی ایگریمنٹ کے تحت فوراً یہ رقم اس کی ادا کرے. خام خواہ لوگوں کو ستانا, ٹال مٹول کرتے رہنا, کیونکہ قرض کی ادائیگی کے اندر ٹال مٹول سے کام لینا اور اس سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچانا یہ خود ایک ظلم ہے اور گناہ والا کام ہے. جب لوگ ادھر قسطوں کی سستی کرتے ہیں جمیل صاحب, تو سامنے والا نئی شرطیں اور وہ ناجائز شرطیں لگائے گا کہ بھائی اتنی پلنٹی آپ کو لگ جائے گی, اتنے آپ کو یہ چیزیں ادا کرنی پڑے گی. تو اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر بہرحال اس طرح کے سودے کرنا جائز نہیں ہوگا.